तारीख 27 दिसंबर दिन शुक्रवार। नमस्कार भारत के साथ मैं हूं मानसी दास। आरएसएस प्रमुख के बयान का हो रहा है विरोध, बीजेपी की सहयोगी पार्टियां भी नहीं है चुप।
लेकिन अभी जो हिंदू तो नहीं है, इनको हिंदू समझना ठीक नहीं है, लेकिन वो हिंदुस्तानी है, सभी लोग हिंदू है, ऐसा बोलना ठीक नहीं है।
14 महीने की बच्ची का दर्द, अब तक नहीं लौटे विरोध प्रदर्शन पर गए माँ पिता।
बोलती अम्मा आओ, हम लोग बोलते हैं मामा, अम्मा और पापा तुम्हारे ऑफिस गए हैं, बाबू थोड़ा इधर उधर देखती है, उसके बाद उदास बैठ जाती है।
वर्षांत कार्यक्रमों में आज चर्चा गजल गायक जगजीत सिंह की।
पगड़ी वगड़ी बांध के जब आए तो ऑडियंस हंसने लगी कि ये तो भांगड़ा गाना चाहिए, वो बस आंख बंद करके आलाप गाते रहे और ऑडियंस चुप।
जानेंगे अखबारों की सुर्खियां भी, लेकिन पहले विश्व समाचार।
बीबीसी समाचार भूमिका राय से। पाकिस्तान के प्रधानमंत्री इमरान खान ने आरएसएस यानी राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ के एक कार्यक्रम का वीडियो शेयर करते हुए सोशल मीडिया पर लिखा है कि आरएसएस के कारण मुसलमानों का नरसंहार हो, उससे पहले अंतर्राष्ट्रीय जगत को जग जाना चाहिए। उन्होंने लिखा कि मुसलमानों के नरसंहार के सामने दुनिया के दूसरे नरसंहार बहुत छोटे साबित होंगे। इधर इसी कार्यक्रम में दिए गए आरएसएस प्रमुख के एक बयान का देश के भीतर विपक्ष समेत सत्ताधारी बीजेपी की सहयोगी पार्टियां भी विरोध कर रही हैं। आरएसएस प्रमुख मोहन भागवत ने कहा था कि संघ देश के सभी 130 करोड़ लोगों को हिंदू मानता है। एक हाई प्रोफाइल मामले में जापान में एक चीनी नागरिक को एक ही परिवार के 4 लोगों की हत्या करने के आरोप में फांसी की सजा दी गई है। बीते 10 सालों में ये पहला मामला है जब किसी विदेशी नागरिक को फांसी की सजा दी गई है। वही वही नाम के इस शख्स ने साल 2003 में अपने 2 सहयोगियों के साथ मिलकर इन हत्याओं को अंजाम दिया था। इसके बाद वो दोनों चीन भाग गए थे, जहां एक शख्स को साल 2005 में फांसी दी गई जबकि एक को उम्र कैद की सजा। विकिपीडिया वेबसाइट चलाने वाली विकिमीडिया फाउंडेशन ने तुर्की के एक न्यायालय के उस फैसले का स्वागत किया है जिसमें कहा गया है कि उनकी वेबसाइट पर देशव्यापी प्रतिबंध असंवैधानिक है। अदालत ने अपना फैसला सुनाते हुए कहा कि देश भर में वेबसाइट पर रोक लगाना अभिव्यक्ति के अधिकार का उल्लंघन है। तुर्की सरकार ने साल 2017 में विकिपीडिया पर प्रतिबंध लगा दिया था। ये प्रतिबंध वेबसाइट पर मौजूद उन जानकारियों को देखते हुए लगाया गया था जिसमें लिखा गया था कि तुर्की ने सीरिया में आतंकी संगठनों को समर्थन किया था। विकिमीडिया फाउंडेशन इस मामले को लेकर यूरोपीय मानवाधिकार न्यायालय भी गई है। कोर्ट में मौजूद फाउंडेशन के मुख्य वकील शैन ने कहा,
Today's judgment is a welcome ruling for Wikimedia.
विकिमीडिया आज के फैसले का स्वागत करता है, लेकिन इसका ये मतलब बिल्कुल भी नहीं है कि यूरोपीय मानवाधिकार न्यायालय से इसे वापस ले लिया जाएगा। हमें तुर्की के संवैधानिक न्यायालय के इस फैसले को बारीकी से देखने के लिए वक्त लेना होगा। हमें इसके सभी आयामों को देखना होगा। फाउंडेशन के मुख्य वकील शैन के शब्द। आप सुन रहे हैं बीबीसी समाचार। मैक्सिको के विदेश मंत्री मार्शेलो एब्रॉड ने कहा है कि उनका देश बोलीविया के खिलाफ अंतर्राष्ट्रीय अदालत में आरोप दायर कर रहा है। उनका आरोप है कि बोलीवियाई सुरक्षाकर्मी लापाज में मैक्सिको दूतावास पर और उनके राजदूतों पर ज़रूरत से अधिक निगरानी कर रहे हैं और उनके राजनयिकों को डराया धमकाया भी जा रहा है। इधर बोलीविया का आरोप है कि मैक्सिको ने 9 अधिकारियों को दूतावास में शरण दे रखी है, जबकि मैक्सिको इससे इनकार करता रहा है। मार्शेलो एब्रॉड ने कहा, हम अंतर्राष्ट्रीय अदालत में अपील करने जा रहे हैं। संयुक्त राष्ट्र और दूसरे अंतर्राष्ट्रीय संस्थानों को भी संपर्क किया गया है, लेकिन क्यों? ताकि ये सुनिश्चित किया जा सके कि वियना समझौते का सम्मान हो। मार्शेलो एब्रॉड के शब्द। रिपब्लिकन पार्टी की सांसद लीसा मुर्कोस्की का कहना है कि वो अमरीकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप के महाभियोग परीक्षा से पहले अपनी पार्टी के रुख से काफ़ी परेशान हैं। अमरीकी राष्ट्रपति पर आरोप है कि उन्होंने अपने राजनीतिक प्रतिद्वंद्वी जो बाइडेन और उनके पुत्र के खिलाफ जांच शुरू करने के लिए यूक्रेन पर दबाव बनाया। अमरीकी राष्ट्रपति इस आरोप से इनकार करते रहे हैं। अब उन्हें रिपब्लिकन के वर्चस्व वाले सीनेट के महाभियोग का सामना करना है। उम्मीद की जा रही है कि इस दौरान सदस्य निष्पक्ष रहेंगे। निजेर में अधिकारियों का कहना है कि देश के पश्चिमी हिस्से में संदिग्ध जिहादियों ने कम से कम 13 सैनिकों की हत्या कर दी है। इन सैनिकों पर करीब 100 से अधिक हथियारबंद लोगों ने हमला किया था। बीबीसी समाचार।
بی بی سی ہندی سے آج دن کی پہلی سبھا نمسکار بھارت میں میں ہمارے ساتھ جڑے شروتاؤں کا ابھیوادن کرتی ہوں. آپ ریڈیو پر یہ کارکرم اور بی بی سی ہندی ڈاٹ کام پر یہ کارکرم لائیو سن رہے ہیں. آر ایس ایس پرمکھ موہن بھاگوت نے اسی سپتاہ ایک بیان دیا تھا کہ راشٹریہ سوئم سیوک سنگھ بھارت میں رہنے والے سبھی لوگوں کو ہندو مانتا ہے. ان کے اس بیان کو لے کر نہ صرف وپکشی پارٹیوں سے بلکہ کیندر کی ستاداری بی جے پی کی سہیوگی پارٹیوں کی اور سے بھی ورودھ کی آوازیں اٹھنے لگی ہیں. کیندریہ منتری رامداس اٹھاولے نے بچتے بچاتے ہی صحیح مگر موہن بھاگوت کے بیان کو غلط قرار دیا ہے. گروار کو اور نیتاؤں کی اور سے بھی اس معاملے پر پرتکریا آئی. سنیے بی بی سی سنواداتا آدرش راٹھور کی رپورٹ.
کسی بھی بھاشا کا بولنے والا ہو, کسی بھی پرانت کا رہنے والا ہو, کسی بھی اپاسنا پدھتی میں پوجا کرنے والا ہو یا کسی کی پوجا نہ کرنے والا ہو, وہ بھارت ماتا کا پتر ہندو ہے. اور اس سرخ میں ہمارا 130 کروڑ لوگوں کا پورا سماج سنگھ کے لیے ہندو سماج ہے.
راشٹریہ سوئم سیوک سنگھ کے پرمکھ موہن بھاگوت کے اس بیان کو لے کر ایک بار پھر ہنگامہ کھڑا ہو گیا ہے. بدھوار کو بھاگوت نے جو کہا تھا وہ پہلا موقع نہیں تھا. راشٹریہ سوئم سیوک سنگھ اور اس کے سرسنگھ چالک کئی بار یہ کہہ چکے ہیں کہ بھارت میں رہنے والے سبھی ناگرک ان کے لیے ہندو ہیں, لیکن ہر بار کی طرح اس بار بھی ان کے بیان کی آلوچنا ہو رہی ہے. کانگریس نیتا سندیپ دیکشت نے موہن بھاگوت کے اس بیان کو لے کر تو یہاں تک کہہ دیا کہ ہر سنستھا کے ایسے بیانوں کو توجہ دینا ٹھیک نہیں ہے.
کل تو میں بھی کوئی ویاخیا کر دوں کہ صاحب یہاں اسی طریقے کے لوگ رہتے ہیں, تو مجھے تو یہ نہیں سمجھ میں آیا ایسی ایسی چیزیں آپ بیچ میں بولتے رہتے ہیں, اس کا ارتھ کیا ہے؟ اور دوسرا, آپ لوگوں کو بھی اس چیز کو توجہ دینے کا کیا مطلب ہے؟ کوئی ایک سنگٹھن ہے, سنستھا ہے, وہ کسی طریقے سے کوئی بھی چیز پریبھاشت کرتی رہے, وہ کیا پبلک میں سارجنک روپ سے چرچا کا کوئی وشے بھی ہے کیا؟
کانگریس کے علاوہ انیہ پارٹیوں کے نیتاؤں نے بھی آر ایس ایس پرمکھ کے بیان کی آلوچنا کی ہے. اے آئی ایم آئی ایم پرمکھ اور حیدرآباد کے سانسد اویسی نے کہا,
سوال یہ ہے کہ ہندوستان کے کانسٹیٹیوشن میں, سمویدھان میں شاید موہن بھاگوت صاحب نہیں پڑھے ہوں گے, رائٹ ٹو ایکوالٹی ہے, رائٹ ٹو لائف ہے, یہ کیا ہے؟ یہ ہندوستان کی ڈائیورسٹی کو, پلورلزم کو سیلیبریٹ کرتا ہے.
کیندر میں ستا پر بیٹھی بھارتیہ جنتا پارٹی کو سنگھ کے نیتاؤں کے اس طرح کے بیانوں کے کارن پہلے بھی ویروت کا سامنا کرنا پڑا ہے. پہلے وپکشی دل ہی آلوچنا کرتے تھے, لیکن اس بار مودی سرکار میں منتری رامداس اٹھاولے نے بھی سنگھ پرمکھ کے بیان کو انوچت بتایا ہے.
جب ہندوستانی ہے یا بھارتی ہے, اسی طرح کا بیان اگر ہوتا تھا تو بہت اچھی بات ہوتی تھی, لیکن ابھی جو ہندو تو نہیں ہے, ان کو ہندو سمجھنا ٹھیک نہیں ہے, لیکن وہ ہندوستانی ہے, لیکن سبھی لوگ ہندو ہے, ایسا بولنا ٹھیک نہیں ہے.
آر ایس ایس کے سبھی بھارتیوں کو ہندو ماننے کے رخ کے کارن بھارتیہ جنتا پارٹی کو کئی بار اسہج ہونا پڑا ہے. اسی سال اکتوبر میں سکھ دھرم سے جڑی سب سے بڑی دھارمک سنستھا اکال تخت کے جتھے دار گیانی ہرپریت سنگھ نے راشٹریہ سوئم سیوک سنگھ پر دیش کو بانٹنے والی گتیویدھیاں چلانے کا آروپ لگایا تھا. ان کا کہنا تھا کہ سنگھ بھارت کو ہندو راشٹر بنانے کی بات کرتا ہے, مگر یہ دیش کے ہت میں نہیں ہے. اس سمے بی جے پی نیتا آر پی سنگھ نے اس بیان پر آپتی جتائی تھی. انہوں نے کہا تھا کہ ہندو دھرم نہیں بلکہ سنسکرتی ہے. حالانکہ انہوں نے یہ صفائی بھی دی تھی کہ آر ایس ایس کا 3 سدسیوں کا منڈل الپ سنکھیک آیوگ سے ملا تھا اور انہوں نے مانا تھا کہ سکھ الگ دھرم ہے اور اس کا الگ استتو ہے. آدرش راٹھور, بی بی سی, دلی.
اتر پردیش کے کئی علاقوں میں ناگرکتا سنشودھن قانون اور این آر سی کے خلاف بیتے سپتاہ ورودھ پردرشن ہوئے. اس دوران ہوئی ہنسا کے معاملے میں اب تک 1000 سے زیادہ لوگوں کو گرفتار کیا جا چکا ہے. گرفتار لوگوں میں وارانسی کے روی شیکھر اور ان کی پتنی ایکتا بھی ہیں. دونوں کو جیل بھیج دیا گیا ہے, لیکن ان کی 14 مہینے کی معصوم بیٹی اسی انتظار میں ہے کہ کب اس کے ممی پاپا آئیں گے اور شاید وہ ان کے لیے چاکلیٹ لے کر آئیں گے. سنیے لکھنؤ سے ہمارے سہیوگی سمیرات مچ مشر کی رپورٹ.
ناگرکتہ قانون کے خلاف 19 دسمبر کو ہوئے پردرشن میں وارانسی میں بھی کافی ہنسا ہوئی تھی. وارانسی کے محمور گنج میں رہنے والے روی شیکھر اور ان کی پتنی ناگرکتہ قانون کے خلاف پردرشن میں بھاگ لینے گئے تھے. گھر والوں کے مطابق وہ لوگ شانتی پورن پردرشن کر رہے تھے, لیکن انہیں بھی گرفتار کر لیا گیا. روی شیکھر کے بڑے بھائی ششی کانت بتاتے ہیں,
15 مارچ ان لوگوں کو پولیس نے کہا گرفتاری دینے کے لیے, اور یہ لوگ جو ہے سب لوگ بڑے شانتی پورک طریقے سے, اس کا ویڈیو بھی پولیس کے پاس اویلیبل ہے, ان لوگوں نے اپنی گرفتاری دی اور ان لوگوں کو وہاں سے لے جا کر کے پولیس لائن میں बिठा दिया गया। सूचना तो हम लोगों को ये मिली कि गिरफ्तारी हुई है और पुलिस वाले कह रहे हैं कि शांति भंग में आप लोगों का चालान किया गया है और आप लोगों को शाम को रिहा कर दिया जाएगा। ऐसा कह करके हम लोगों को पुलिस लाइन ले जाया गया। 19 तारीख को इन लोगों को 151 शांति भंग में निरुद्ध किया गया और इन लोगों पर जो दूसरी FIR की गई वो 21 तारीख को की गई, जिसमें और सब ढेर सारी दूसरी धाराएं लगाई गई।
रविशेखर और उनकी पत्नी एकता पर्यावरण के मुद्दों पर काफी काम करते हैं। रवि और एकता अपनी 14 महीने की मासूम बच्ची को उसकी दादी और बड़ी मम्मी के हवाले करके प्रदर्शन में शामिल होने गए थे। इनके परिवार वालों के सामने एक और जहां इन दोनों की जमानत की जिम्मेदारी है, वहीं उससे अहम उस छोटी सी बच्ची की जिम्मेदारी भी है जो बिना माँ बाप के उन लोगों के पास है। रवि की बुजुर्ग माँ शीला तिवारी कहती हैं,
फिर भी नहीं खाती है, किसी तरह हम लोग इसको खिलाते हैं, 2 चम्मच 4 चम्मच खाती है, बोलती है अम्मा आओ पापा आओ, हम लोग बोलते हैं मामा अम्मा और पापा तुम्हारे ऑफिस गए हैं बाबू अभी आ जाएंगे, तो हाँ बोल के फिर थोड़ा इधर उधर देखती है, उसके बाद उदास बैठ जाती है।
रविशेखर और एकता समेत 56 नामजद और कुछ अज्ञात लोगों के खिलाफ कई गंभीर धाराओं में मुकदमे पंजीकृत किए गए हैं। वाराणसी पुलिस का कहना है कि जो भी लोग गिरफ्तार किए गए हैं उनके खिलाफ हिंसा भड़काने के पर्याप्त साक्ष्य हैं। वाराणसी के जिलाधिकारी कौशल राज शर्मा कहते हैं,
इतना लोगों को भड़काया गया कि घर में कोई ना बैठे, मैं नहीं जानता कि किन किन बातों को लेके भड़काया गया, पर कोशिश की गई कि सारे घर के लोगों को बाहर निकाल के इस हंगामे में शामिल किया जाए और गलियों में घूम घूम के जुलूस निकाले जाए, ऐसे लोगों को आइडेंटिफाई किया गया है।
नागरिकता कानून के खिलाफ प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के संसदीय क्षेत्र वाराणसी में भी लोगों ने बढ़ चढ़ कर प्रदर्शन किया था। बेनियाबाग इलाके में हजारों की संख्या में लोग जब सड़क पर उतरे तो अचानक हालात बेकाबू होने लगे और पुलिस को लाठीचार्ज करना पड़ा। प्रत्यक्षदर्शियों के मुताबिक प्रदर्शनकारियों को पुलिस ने दौड़ा दौड़ा कर पीटा भी, जिससे काफी देर तक अफरा तफरी मची रही। हालांकि रविशेखर के परिजनों के मुताबिक उन लोगों को हंगामे से पहले ही हिरासत में ले लिया गया था। समीर आत्मज मिश्र, BBC लखनऊ।
बीते सप्ताह यानी शुक्रवार को उत्तर प्रदेश के कई इलाकों में विरोध प्रदर्शन हुए थे और उसके बाद आज फिर शुक्रवार है और जुमे की नमाज से ठीक पहले यहां कई इलाकों में धारा 144 लागू कर दी गई है। सुरक्षा व्यवस्था चाक चौबंद की गई है और कई इलाकों में इंटरनेट सेवाएं भी बंद की गई हैं। मेरठ, सीतापुर, कानपुर, गाजियाबाद, बिजनौर, फिरोजाबाद, अलीगढ़, मथुरा, आगरा में इंटरनेट बंद किया गया है और गुरुवार को कई प्रदेशों में पुलिस ने फ्लैग मार्च भी किया है और लोगों से शांति बनाए रखने की अपील की है। कार्यक्रम में आगे बढ़े उससे पहले जानते हैं कि दिल्ली से छपने वाले अखबारों में आज क्या खास है। भूमिका, ठंडी का दिन है आज, कुछ खास है अखबारों में?
बिल्कुल, नवभारत टाइम्स लिखता है कि पिछले 118 साल में ऐसा पहली बार हुआ है जब दिसंबर महीने में इतनी ठंड पड़ रही है और इससे पहले साल 1901 का उन्होंने दिया है कि इतना टेम्परेचर जो अभी जो तापमान इतना जो नीचे गया है यह पहली बार है कि ऐसा हुआ है। इसके अलावा एक अहम खबर की बात करते चलें कि एयर इंडिया जो है वो घाटे में चल रही है, ये हम सभी जान रहे हैं। करीब 60,000 करोड़ रुपए के कर्ज में है एयर इंडिया, लेकिन अब एयर इंडिया ने एक फैसला लिया है कि वो किसी भी सरकारी एजेंसी जिन पर 10 लाख रुपए से अधिक रकम बकाया है उनके किसी अधिकारी को टिकट जारी नहीं करेगी। तो ये एक बड़ा फैसला है और इसमें CBI और ED के अधिकारी भी शामिल हैं और ये खबर जो है वो इंडियन एक्सप्रेस ने अपने साइट पर प्रकाशित की है। इसके अलावा बॉलीवुड से एक खबर है लेकिन उस तरीके की मनोरंजन की खबर नहीं है। रवीना टंडन और डायरेक्टर कोरियोग्राफर फराह खान और कॉमेडियन भारती सिंह पर एक टीवी शो के दौरान धार्मिक भावनाओं को चोट पहुंचाने के आरोप में मामला दर्ज किया गया है और ये मामला जो है ये बोला गया है ईसाई धर्म के एक शख्स हैं, उन्होंने ये मामला दर्ज करवाया और उन पर FIR है। IPC की धारा 295A के तहत इन तीनों ही लोगों के खिलाफ जो है वो केस दर्ज किया गया है। एक हम सभी जान रहे हैं कि हमें अपने को लगता है हमें और हमारा राज्य सबसे अच्छा हो, लेकिन राज्य की सूची में आपका राज्य कौन से नंबर पर आता है आज आप ये देख सकते हैं। द हिंदू ने इस खबर को प्रकाशित किया है पहले पन्ने पर।
ये गुड गवर्नेंस की रेटिंग है।
बिल्कुल, कार्मिक मंत्रालय ने एक सूची जारी की है जिसमें उन्होंने कई मापदंडों के आधार पर राज्यों को वरीयता सूची में रखा है और वरीयता सूची में जो तमिलनाडु है वो सबसे नंबर एक पर है, उसके बाद महाराष्ट्र है, कर्नाटक है। अच्छा, आप गेस करें मानसी जी कि उत्तर प्रदेश कौन से नंबर पे होगा, बिहार कौन से नंबर पे होगा?
कोई आइडिया नहीं, आप बताएं भूमिका।
उत्तर प्रदेश जो है वो 17वें नंबर पे है और बिहार जो है वो 15वें नंबर पे है। अमूमन
उत्तर प्रदेश से थोड़ा बेटर है,
बेटर है। और अगर केंद्र शासित प्रदेशों की बात करें तो राजधानी दिल्ली जो है वो पुदुचेरी से थोड़ा नीचे है, 3रे नंबर पे। पुदुचेरी ने बाजी मारी, केंद्र शासित प्रदेशों में वो पहले नंबर पे है। इसके आपके पास भी,
मेरे पास एक खबर है, दी स्टेट्समैन में ये खबर छपी है। कहना ये है कि साबरकांठा में करीब 500 हेक्टेयर की खेती को टिड्डों के कारण भारी नुकसान हो रहा है, और ये टिड्डे पाकिस्तान की तरफ से आए हैं जो सरसों, जीरा, कपास, अरंडी और आलू की फसलों को बर्बाद कर रहे हैं।
जी, इसके अलावा एक अहम खबर ये है कि जुमे की नमाज से पहले आज यूपी में, यूपी के कई ज़िलों में हाई अलर्ट जो है जारी किया गया है। और जाते जाते बता दूं कि आज चचा गालिब, जिन्हें हम सभी प्यार से चचा, उनका मिर्ज़ा गालिब, आज उनका जन्मदिन है, तो आप अपनी तरफ से बधाई दें, उनकी नज़में पढ़ें। जी
शुक्रिया अखबारों के विस्तृत समीक्षा के लिए भूमिका। और अब वक्त है एक खास रिपोर्ट का। जिन दिनों रॉक एंड रोल और लता, रफ़ी, किशोर और मुकेश की दिलकश आवाज़ पूरे भारत में धूम मचाए हुए थी, उन दिनों राजस्थान के एक कस्बे से मुंबई आए एक नौजवान ने अपनी मखमली आवाज़ से गज़लों की दुनिया को संवारने का बीड़ा उठाया। ये थे मशहूर गज़ल गायक जगजीत सिंह। वर्षांत कार्यक्रमों की दूसरी कड़ी में बीबीसी संवाददाता रेहान फजल नज़र दौड़ा रहे हैं जगजीत सिंह के संगीतमय जीवन पर।
सरकती जाए है रुख से नकाब आहिस्ता, निकलता
जगजीत सिंह के बारे में एक कहानी मशहूर है कि जब वो जालंधर के डीएवी कॉलेज में पढ़ा करते थे तो हॉस्टल में रहने वाले छात्र उनके बगल के कमरे में रहना पसंद नहीं करते थे, क्योंकि जगजीत सुबह 5 बजे उठकर ही 2 घंटे का रियाज शुरू कर देते थे। ये बहुत कम लोगों को पता है कि ऑल इंडिया रेडियो के जालंधर स्टेशन पर जगजीत सिंह को उपशास्त्रीय गायन की शैली में फेल कर दिया गया था, जबकि शास्त्रीय शैली गायन में उन्हें बी श्रेणी का दर्जा दिया गया था। एक बार जगजीत सिंह और मशहूर निर्देशक सुभाष खई एक अंतर्राज्यीय उत्सव में भाग लेने बैंगलोर गए थे। जगजीत सिंह पर किताब लिखने वाली सत्या सरन बताती हैं।
खई साहब आते थे ड्रामेटिक्स में और जगजीत जी जाते थे क्लासिकल म्यूजिक में, तो बैंगलोर गए थे और दोनों साथ में थे अपने अपने कॉलेजेस के लिए। तो अनाउंस किया गया कि अभी जगजीत सिंह आएंगे और वो क्लासिकल गाएंगे, और जब वो ऑडियंस में देखा, वो सरदार थे तब, तो पगड़ी वगड़ी बांध के जब आए तो ऑडियंस हंसने लगे कि ये तो भांगड़ा गाना चाहिए इसको, ये क्या क्लासिकल गा रहा है। खई साहब कहते हैं कि उन्होंने ही वॉज नॉट एट ऑल परटर्ब्ड, वो बस आंख बंद करके आलाप गाते रहे और ऑडियंस चुप हो गई, और फिर उन्होंने अपना सुर लगाया और ही स्टार्टेड सिंगिंग द क्लासिकल रागा, और बिल्कुल ऑडियंस चुप रही, और उसके बाद तालियां जो बजने लगी तो 5-5 मिनट में तालियां बजने लगी, और घाई साहब बोलते कि मेरे आंख में तो आंसू भर आए।
प्यार का पहला खत लिखने में वक्त तो लगता है।
इस सफर की शुरुआत राजस्थान के छोटे से शहर श्री गंगानगर में हुई थी। जगजीत ने पहले पंडित छगनलाल शर्मा से सीखा और बाद में जमाल खां उनके उस्ताद बने। जगजीत के छोटे भाई करतार सिंह याद करते हैं।
फादर को हमारे बहुत शौक था संगीत का, कुछ परिवार के हालात ऐसे थे कि वो संगीत सीख नहीं पाए थे, उनके मन में ये बात थी कि मैं अपने किसी न किसी बच्चे को पूरी तरह ट्रेन करूँ म्यूजिक में। तो जब हालात कुछ बेहतर हुए तो उन्होंने भाई साहब को चुना, काफ़ी स्ट्रगल के बाद एक उस्ताद जी को चुना गया। तो उन्होंने अपनी शर्त रखी कि भाई मैं तो पहले लड़के की आवाज़ सुनूंगा, अच्छा लगा तो ज़रूर सिखाऊंगा। मीटिंग फिक्स हुई, गाना सुनाया गया, उस्ताद जी को पसंद आया, उस्ताद जमाल खान साहब जयपुर घराने के। उसके बाद फादर ने पूछा कि आपकी फ़ीस क्या होगी, तो कह रहे फीस कुछ नहीं, मुझे रोज़ एक बोतल शराब चाहिए। हमारे फादर तो इतना पीते थे ना, कुछ नॉन वेज खाते थे, तो एक जानने वाले थे, उनकी ड्यूटी लगाई गई कि भाई आपने रोज़ एक बोतल शराब पैदा करनी है।
1965 में जगजीत सिंह मुंबई पहुंचे थे, जहां उनकी मुलाकात उभर रही गायिका चित्रा सिंह से हुई। उस समय वो शादीशुदा थीं और उनकी एक बेटी भी थी। चित्रा के साथ उनकी दोस्ती बढ़ी और दोनों ने साथ गाना शुरू कर दिया। जगजीत ने ही चित्रा को सुर साधने, उच्चारण और आरोह अवरोह की कला सिखाई।
मैं उनसे सीख नहीं रही थी, वो हमारे दोस्त बन गए थे और हम उनके गाने, उनकी आवाज, उनके कंपोजिशंस मेनली बहुत अप्रिशिएट करने। मुझे एक्चुअली आई एम फ्रॉम बंगाल, तो मुझे उर्दू के साथ कोई बिल्कुल कुछ भी नहीं था नाता, तो इनके गाने के थ्रू में आई स्टार्टेड लिसनिंग टू, उसके पहले तो तलत महमूद को सुनते थे, वो भी सुनते थे तलत महमूद को, गाने तो मुझे आता था गाना, लेकिन उनके कंपोजिशन गाना और वैसे गाना गाना जमीन आसमान का फर्क है। वो बाद में भी हमने और आर्टिस्टों के थ्रू में भी देखा कि आप मोहम्मद रफी को कॉपी कर लोगे, मन्ना डे को कॉपी कर लोगे, मुकेश को कॉपी कर लोगे, लेकिन जगजीत सिंह को कॉपी करना इज इम्पॉसिबल। उस वक्त जो हमने उनके गाने गाने के लिए जब बैठे, तो वो जो करेक्शन कराते थे मुझे, दैट यूज्ड टू बी माय ट्रेनिंग विद हिम, तो मैं समझ के फिर गाना शुरू करती थी। उन्होंने मेरी आवाज की जो कैरेक्टरिस्टिक हुआ करता था उसको समझ के उन्होंने मेरे लायक कंपोजिशन बनाना शुरू किया।
चित्रा की आवाज महीन और ऊंचे स्वर वाली थी, जबकि जगजीत की आवाज भारी थी। वो किसी गाने को आगे बढ़ा सकते थे और जरूरत पड़ने पर उसे 40-45 मिनट तक खींच भी सकते थे, जबकि चित्रा ऐसा नहीं कर पाती थी।
हमारे दोनों की जो आवाजें थी वो कैरेक्टरिस्टिकली दे वर कम्प्लीटली डिफरेंट, तो उनकी कंपोजिशंस जो वो करते थे, ही यूज्ड टू डू इट सो स्मार्टली कि ऊंची लाइनें या अंतरा का जो कंपोजिशन वो करते थे, जो मेरे लिए छोड़ देते थे, दोज यूज्ड टू बी ऊंचे सुर में, और जो नीचे के सुर थे वो गाते थे। तो आई थिंक ये जो एक कॉम्बिनेशन हमारी आवाज की थी विद अ टोटल कॉन्ट्रास्ट, दैट इज व्हाट अपील्स टू पीपल। जोड़ियों में गाना उन दिनों होता ही नहीं था। आई थिंक वी वर प्रोबेबली इफ नॉट द वेरी फर्स्ट बट फर्स्ट सक्सेसफुल जोड़ी जो कि पढ़े लिखे भी थे और गाने जो थे ऐसे ही था, मिसमैच्ड आवाज।
जिस रिकॉर्ड ने उनकी पहचान पहली बार बनाई वो था अनफॉरगेटेबल्स। उस वर्ष ये रिकॉर्ड किसी भी फिल्मी रिकॉर्ड से ज्यादा बिका।
76 में हमारा पहला LP जो है लॉन्ग प्ले द अनफॉरगेटेबल्स वो रिलीज हुआ, तो वो हमारी सबसे बड़ी फर्स्ट माइलस्टोन कहना चाहिए उसको, जो अभी तक पॉपुलर है, उसकी गजलें भी पॉपुलर हैं। आहिस्ता आहिस्ता उसमें है, बात निकलेगी तो फिर दूर तक जाएगी उसमें है, और बहुत पहले से उन कदमों की आहट जान लेते हैं।
सोनासी में उनका रिकॉर्ड कम अलाइव आया। इसमें कई चीजें नई थी, मसलन कॉन्सर्ट की लाइव रिकॉर्डिंग, गजल सुनाते सुनाते जगजीत की सुनने वालों से बातचीत, और बीच बीच में चुटकुले। जगजीत सिंह के छोटे भाई करतार सिंह याद करते हैं,
मैंने जब भी उनसे बात करी कि आप जो कुछ सुनाते हो स्टेज पे, तो कह रहे यार कनेक्ट करना होता है ऑडियंस के साथ। अब हैवी गजल सुनाने के बाद सबके सब रोने लग जाए महफिल में या ऑडियंस में, उसके बाद उनको वापस उसी मोल्ड में लाना है, तो एक आध जोक हो जाए बीच में, एक लाइट गजल हो जाए, तो ये सारा जो ऑडियंस के साथ उनकी केमिस्ट्री थी, जो रेपो बनाते थे, जो कनेक्ट होता था, ये उसका एक हिस्सा था।
गम नहीं, शराब नहीं।
उसके बाद आया गुलजार का टेलीविजन पर मिर्जा गालिब सीरियल। गुलजार ने संगीत और गाने की जिम्मेदारी जगजीत सिंह पर छोड़ी। जगजीत के सामने चुनौती थी कि तलत से लेकर लता, बेगम अख्तर, मेहंदी हसन और सुरैया तक ने खालिब को गाया था, उनको उन सब से अलग होना था। जगजीत ने इस एल्बम के साथ इतिहास रच दिया।
गुलजार और जगजीत दोनों जीनियस टाइप पीपल हैं। दे आर अनपैरेलल्ड इन देयर फील्ड्स, बट थोड़ा सा कंपटीशन भी है उनमें। तो ये बात रही कि एज क्रिएटिव आर्टिस्ट उनमें एक सिनर्जी थी, एक दूसरे को बढ़ाते जाते थे, बट जगजीत के साथ उनका बहुत ही टक्कर होने लगा, क्योंकि गुलजार इज वेरी स्ट्रिक्ट। ही सेड अगर आप म्यूजिक बनाओगे तो उसमें वही इंस्ट्रूमेंट्स यूज करोगे जो उस समय यूज किए जाते थे। और जगजीत ने कहा क्या करूं, कैसे बनाऊं, पर ये देखिए कि दोनों की क्रिएटिव एनर्जीज इतने स्ट्रांग थे कि वो जो म्यूजिक है वो मेरे ख्याल से जगजीत जी के सबसे बढ़िया म्यूजिक है।
एक बात पे कहते हो तुम के तू क्या है, तुम ही कहो कि ये अंदाज़े गुफ्तगू क्या है।
1999 में जब जगजीत पाकिस्तान गए तो राष्ट्रपति मुशर्रफ के घर भी गए, जहां दोनों ने साथ साथ पंजाबी गीत गाए और मुशर्रफ ने उनके साथ तबला भी बजाया। उसी ट्रिप में जब वो PIA के विमान से वापस दिल्ली आ रहे थे तो पायलट ने विमान की लैंडिंग में देरी कर दी।
जैसा मुझे उन्होंने बताया कि ऐसे उनको पता चला क्रू को कि जिंगी साहब हैं फ्लाइट में, तो उनकी कंपनी को और प्रोलोंग करने के लिए उन्होंने कुछ नीचे कांटेक्ट करा कंट्रोल को कि ऐसे ऐसे है कुछ हमारे साथ एक VIP हैं तो हम थोड़ा 10 मिनट ज्यादा लेंगे, तो ऐसे कुछ फ्लाइट को उन्होंने डिले कर दिया थोड़ा सा। बहुत प्रॉब्लम थे पाकिस्तान में।
जगजीत अपने साजिंदों के आराम और सम्मान का बहुत ध्यान रखते थे। सत्या सरन एक किस्सा सुनाती है।
दमन स्तू जो उनके फेवरेट रिकॉर्डिस्ट थे, उन्होंने कहा कि एक बार उनके साथ जब टूर पे गए थे तो उन्होंने पूछा कि तुम चाय पीते हो कि क्या पीते हो सुबह। दमन ने कहा हाँ मैं सुबह उठ के चाय पीता हूँ। तो उठने से पहले जगजीत उठ के चाय बना के उनके सामने खड़े हो गए कि लो चाय पी लो उठो। और उनके और भी आदतें थे, जैसे वो अपना एक ड्रिंक पसंद करते थे, पर शायद वो ऑर्गेनाइजर सोचते थे कि सबके सामने अगर ये बैठ के ड्रिंक करे तो पता नहीं क्या होगा, तो वो स्टील ग्लास में रम पीते थे। सिगरेट का बहुत शौक था और वो भी उनको छोड़ना पड़ा बाद में।
एक बार BBC ने जगजीत सिंह से पूछा था कि संगीत के अलावा आपका दूसरा सबसे बड़ा शौक कौन सा है।
म्यूजिक के अलावा आई एम ए गैम्बलर, बॉर्न गैम्बलर, आई गैम्बल, आई ओन हॉर्सेस, रेस हॉर्सेस है मेरे 5-6, तो गैम्बल इज इन माय ब्लड।
लेकिन घुड़दौड़ के शौक की वजह से एक बार उनकी आवाज बुरी तरह बैठ गई।
उनका घोड़ा जो था वो जीतने से लगा हुआ था, तो वो चिल्लाते गए और नहीं उनकी आवाज उसके बाद, तो मेरे ख्याल से 6 महीने उनको काफी तकलीफ हुई उसके बाद, और लता जी ने उनको हेल्प किया।
जावेद अख्तर ने उनके बारे में कहा था कि वो गजल गायकी में भारतीय उपमहाद्वीप के आखिरी स्तंभ थे। पहली बार मैंने उनको अमिताभ बच्चन के घर पर सुना था, उस LP की पहली ही नज्म थी, बात निकलेगी तो दूर तलक जाएगी।
बात निकलेगी तो फिर दूर तलक जाएगी, लोग बेवजह उदासी का सबब पूछेंगे, ये भी पूछेंगे कि तुम इतनी परेशान क्यों हो।
बात निकली और वाकई दूर तलक गई। रेहान फजल, BBC दिल्ली।
और अब कार्यक्रम में आपसे विदा लें, उससे पहले मुख्य समाचार एक बार फिर भूमिका राय से।
BBC समाचार। पाकिस्तान के प्रधानमंत्री इमरान खान ने RSS यानी राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ के एक कार्यक्रम का वीडियो शेयर करते हुए सोशल मीडिया पर लिखा है कि RSS के कारण मुसलमानों का नरसंहार हो उससे पहले अंतर्राष्ट्रीय जगत को जग जाना चाहिए। एक हाई प्रोफाइल मामले में जापान ने एक चीनी नागरिक को एक ही परिवार के 4 लोगों की हत्या करने के आरोप में फांसी की सजा दी है। विकिपीडिया वेबसाइट चलाने वाली विकिमीडिया फाउंडेशन ने तुर्की के एक न्यायालय के उस फैसले का स्वागत किया है जिसमें कहा गया है कि उनकी वेबसाइट पर देशव्यापी प्रतिबंध असंवैधानिक है। निजेर में अधिकारियों का कहना है कि देश के पश्चिमी हिस्से में संदिग्ध जिहादियों ने कम से कम 13 सैनिकों की हत्या कर दी है। रिपब्लिकन पार्टी की सांसद लीसा मुर्कोस्की का कहना है कि वो अमरीकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप के महाभियोग परीक्षा से पहले अपनी पार्टी के रुख से काफ़ी परेशान है। मैक्सिको के विदेश मंत्री मार्शेलो एब्रॉड ने कहा है कि उनका देश बोलीविया के खिलाफ अंतर्राष्ट्रीय अदालत में आरोप दायर कर रहा है। BBC समाचार।
श्रोताओं, जैसा कि आप जानते हैं, ये नमस्कार भारत का आखिरी प्रसारण था। आज स्टूडियो संभाला राजेश चौहान और देवाशीष कुमार ने। BBC हिंदी रेडियो पर शाम 7:30 बजे दिन भर कार्यक्रम 31 जनवरी 2020 तक का पहले की तरह सुनते रहेंगे। फिलहाल मानसी दाज समेत पूरी टीम को दीजिए अनुमति। नमस्कार।